सुन्नी अवधारणाओं का सारांश। मुसलमानों की वास्तविकता से इस्लाम को दूर करने की कोशिश में प्राच्यवाद और इसकी भूमिका। ओरिएंटलिज्म का मूल अर्थ पूर्व की संस्कृतियों और विरासत का अध्ययन है। यह वह प्रवेश द्वार था जिसके माध्यम से पश्चिमी लोग मुसलमानों के जीवन और विचारों को समझने के लिए प्रवेश करते थे। फिर इस्लाम के तथ्यों को चुनौती देकर और उसके सिद्धांतों को विकृत करके उसे बदलो। और हजारों पांडुलिपियों के वैज्ञानिक अध्ययन और निष्पक्ष आलोचना की आड़ में इसे विकृत कर रहे हैं, जैसा कि वे दावा करते हैं। इस क्षेत्र में उनके कार्यों का सारांश इस प्रकार है। पहला, इस्लाम, कुरान और भविष्यवाणी की सच्चाई को चुनौती देना। उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा कि यह यहूदी और ईसाई धर्म का विकृत विकास है या यह पूर्वी धर्मों के एक समूह का संश्लेषण है। इसका जन्म फारस और भारत के धर्मों के साथ अरब बुतपरस्ती के संपर्क से हुआ था। उन्होंने दावा किया कि कुरान मुहम्मद द्वारा लिखा गया था, भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें, या किसी ईसाई साधु ने उसे यह आदेश दिया था। वह पुराना झूठ है। कुरैश के काफिरों ने पहले भी इसका दावा किया था और कुरान ने उनका खंडन किया था, जैसा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कहा था। और जिन लोगों ने इनकार किया उन्होंने कहा है, यह तो बस एक मनगढ़ंत बात है जो उसने रची और दूसरे लोगों ने इसमें उसकी सहायता की। वे अन्यायपूर्वक और झूठ बोलकर आए। और सर्वशक्तिमान ने कहा, हम जानते हैं कि वे कहते हैं कि यह तो मनुष्य ही सिखाते हैं। जिस ज़बान पर ये आरोप लगाते हैं वो विदेशी है और ये साफ अरबी ज़बान है। उन्होंने शियाओं के आरोपों को भी दोहराया। वर्तमान कुरान वास्तविक कुरान के केवल एक तिहाई के बराबर है। इसके बाकी हिस्से को साथियों द्वारा प्रकाशित होने से रोका गया, यह दावा करते हुए कि यह उनके निजी हितों के लिए था और यह शियाओं से छिपा हुआ है, जिसे गलत तरीके से फातिमा का कुरान कहा जाता है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, हम ही ने याद अवतरित की है और हम ही उसे सुरक्षित रखेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि रहस्योद्घाटन पैगंबर को हुआ था, भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। यह मिर्गी और हिस्टीरिया के दौरे हैं या अधिक से अधिक एक प्रकार की काव्य प्रतिभा। यह झूठ कितना झूठा और मूर्खतापूर्ण है, यह अरबी भाषा का हर विद्वान जानता है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, हमने हमें कविता नहीं सिखाई और वह क्या होनी चाहिए। यह एक स्मरण और स्पष्ट कुरान के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने पैगंबर की सुन्नत को चुनौती दी। इसमें कमजोर और मनगढ़ंत हदीसों की मौजूदगी के आधार पर वे इसे पूरे वर्ष सामान्यीकृत करना चाहते थे, या उसके आधार पर तय करें कि यह अविश्वसनीय है। वे भूल गए कि जिन लोगों ने उल्लेख किया है कि सुन्नत में प्रामाणिक हदीसों के अलावा अन्य भी हैं, क्या कमजोर है और क्या विषय है। वे स्वयं मुस्लिम विद्वान हैं और उन्होंने इसे सटीक वैज्ञानिक आधार के माध्यम से प्रदर्शित किया। उन्होंने सही, कमजोर और मनगढ़ंत के बीच अंतर किया, जिसे हदीस विश्लेषण और संशोधन के विज्ञान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने साथियों के बीच सुन्नत के प्रमुख वर्णनकर्ताओं और इसे याद करने वालों पर भी हमला किया। अबू हुरैरा की तरह भगवान उससे प्रसन्न हो सकते हैं। अनुयायियों में अलजुहरी जैसा है, ईश्वर उस पर दया करे। दूसरे, यह दावा कि इस्लाम ने अपने उद्देश्य समाप्त कर लिए हैं। यह विभिन्न रूपों में एक रंगीन निमंत्रण है। कभी कभी वे कहते हैं कि यह एक नैतिक आह्वान है। वह अरब समाज को उसकी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए आई थीं। कभी कभी वे दावा करते हैं कि यह एक सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज को नागरिक समाज में बदलना है। दूसरों का दावा है कि यह एक अपरिपक्व क्रांति है। मक्का में अमीर आकाओं के वर्ग के विरुद्ध और इस सब का नतीजा इस्लाम को एक सीमित समय के लिए क्षणिक घटना मानना, इसका समकालीन वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, इस्लाम को भक्ति कर्मकांड तक सीमित रखना, जैसा कि ईसाई धर्म की संकीर्ण पश्चिमी अवधारणा में है। यह दावा करते हुए कि इस्लाम का शासन सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधि के मामलों से कोई लेना देना नहीं है, वे पवित्र कुरान को नजरअंदाज करते हैं। यह उन छंदों से भरा है जो परमेश्वर के कानून के अनुसार शासन करने का निर्देश देते हैं। यह नैतिकता और लेनदेन स्थापित करता है। यह अर्थव्यवस्था और व्यापार को नियंत्रित करता है। और सर्वशक्तिमान ईश्वर कहते हैं, हे विश्वास करने वालों, पूरी तरह से शांति में प्रवेश करो और शैतान के पदचिन्हों पर न चलो, वह आपका स्पष्ट शत्रु है। अर्थात वे इस्लाम की सभी शिक्षाओं का पालन करते थे। चौथा, दावा करें कि इस्लामी न्यायशास्त्र रोमन कानून से लिया गया है। उनका लक्ष्य दो काम करना है। पहला, न्यायशास्त्र और सर्वशक्तिमान ईश्वर के कानून के बीच संबंध को रद्द करना, और दूसरा, समसामयिक वैधानिक कानूनों से लेना कम करना। जब तक पुराना न्यायशास्त्र है, वे रोमन मूल के होने का दावा करते हैं। आज फ्रांसीसी या स्विस कानून का हवाला देने में कुछ भी गलत नहीं है। और इसी तरह, पांचवां, यह दावा करते हुए कि शरिया समकालीन सभ्यता के अनुकूल नहीं है, जहां इस्लाम को रेगिस्तानी कबीलाई धर्म बताया गया, उनका विधान आधुनिक सभ्य जीवन के अनुकूल नहीं है, और यही मुसलमानों के मौजूदा पिछड़ेपन का कारण है। सच तो यह है कि इस पिछड़ेपन का कारण यही है, मुसलमानों ने अपने धर्म की शिक्षाएं छोड़ दी, जिसने पश्चिम को अपने देश पर कब्जा करने की अनुमति दे दी और उन्हें नजरअंदाज कर उनकी संपत्ति लूटने की साजिशों को अंजाम दे रहे हैं। और चूंकि मुसलमान अपने धर्म का पालन करते थे, उन्होंने सत्य, न्याय और ज्ञान से विश्व पर विजय प्राप्त की और इसके स्वामी बन गए। सिक्स, बोलचाल की बोलियों में लिखने का आह्वान। उन्होंने अरबी भाषा को अस्वीकार कर दिया, इस बहाने से कि यह कठिन है और समसामयिक जीवन के अनुकूल नहीं है। व्याकरण और व्याकरण में विरोधाभास पैदा करना और पवित्र कुरान के तरीके। सातवां, दावा करें कि इस्लाम महिलाओं का तिरस्कार करता है। यह उसे सभ्य जीवन जीने में सक्षम नहीं बनाता है। इस प्रकार हम महिलाओं की मुक्ति के लिए पश्चिम के संदिग्ध आह्वान का समर्थन करते हैं। सच तो यह है कि इस्लाम जैसा कोई भी धर्म या संस्कृति महिलाओं के साथ न्याय नहीं करती। आठवां, इस्लामी इतिहास का विरूपण। उन्होंने इसे राजनीतिक पहलू तक ही सीमित रखा। यह झगड़ों और साजिशों की एक श्रृंखला की तरह है। उन्होंने शासकों को व्यभिचार, मनोरंजन, कविता और गायन में डूबे हुए के रूप में भी चित्रित किया। ऐसा करने में उन्होंने शियाओं की बदनामी और इतिहास के उनके झूठे लेखन पर भरोसा किया। नौवां, विनाशकारी आंदोलनों और गुमराह संप्रदायों का महिमामंडन करना और अपनी भूमिकाएं बढ़ाए। उदाहरण के लिए गूढ़ विद्या और उबैदी, जिन्हें गलती से फातिमिड कहा जाता है, मुताजिला, ड्रूज और सूफी, भटके हुए पात्रों को उजागर करना और उनकी प्रशंसा करना सुनिश्चित करें, अलहल्लाज और इब्न सबा की तरह, और अब्दुल्ला बिन मैमौन अलकदा और शासक अलोबैदी। दसवां, इस्लामी सभ्यता के महत्व को कम आंकना प्रार्थना यह है कि यह रोमन सभ्यता से उधार लिया गया है। 11वां, प्राचीन सभ्यताओं का पता लगाना और उसके परिचितों को पुनर्जीवित करें, फेरोनिक की तरह, और फोनीशियन और असीरियन इस्लाम को सर्वोत्तम रूप में प्रदर्शित करने के लिए। पूर्व की सभ्यताओं के लिए कई कारकों में से सिर्फ एक कारक। 12वां, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक गैर धार्मिक दृष्टिकोण स्थापित करना, अपनी तटस्थता और निष्पक्षता का दावा कर रहे हैं, हालांकि सच्चाई कुछ और ही है। वे अविश्वसनीय किताबों से उद्धरण देने पर जोर देते हैं। इसका उस विषय से कोई लेना देना नहीं है जिस विषय पर वे निर्णय लेते हैं। वे साहित्य की पुस्तकों से लेते हैं। वे पैगंबर की हदीस के इतिहास और विज्ञान की क्या आलोचना करते हैं, और इतिहास से वे न्यायशास्त्र के इतिहास में क्या शासन करते हैं, उनकी आदरणीय पुस्तकों के उदाहरण हैं अलइस्फानी अलमजान के गाने और जानवर अलजाहिज अलमुताजिली द्वारा, और अंत में प्राच्यवादी इस्लाम को नष्ट करना चाह रहे हैं एक सोची समझी योजना के तहत। इसलिए यह स्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार बदलता रहता है। प्रत्येक चरण के परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद वे वर्तमान में तरीकों को बदलने के इच्छुक हैं। उकसावे और खुला हमला, और वे इसके बजाय इसे लागू करते हैं। इस्लामी विचार को समाहित करने की योजना।